आमाल सातवां बाब। फिर सरदार काहिन ने कहा,
क्या ये बातें इसी तरह पर हैं?
उसने कहा,
ऐ भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुलजलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मीरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद न थी, और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी, वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतने का अहद बांधा, और इसी हालत में अब्राहम से इजहाक पैदा हुआ, और आठवें दिन उसका खतना किया गया, और इजहाक से याकूब और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था, और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फिरौन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना न मिलता था, लेकिन याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया, और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थीं बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया, वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सिकम में पहुँचाए गए, और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने सिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज्यादा होता गया, उस वक्त तक के दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को न जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा न रहें। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था, वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था, और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला, और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ऐ जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो? लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकरर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिद्यान के मुल्क में परदेसी रहा किया, और वहाँ उसके 2 बेटे पैदा हुए। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नज़ारे से ताजुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदामंद की आवाज़ आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जरूरत न रही। खुदामंद ने उससे कहा कि अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक ज़मीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है और उनका आहोनाला सुना, पस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा, जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकरर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस फरिश्ते के ज़रिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजुम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमा बरदार होना न चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ मायल हुए, और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह मोड़ कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चुनाचे नबियों की किताब में लिखा है कि ऐ इसराइल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियां गुजरानी, बल्कि तुम मौलक के खेमे और रफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें तुमने सजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबल के परे ले जाकर बसाऊंगा। शहादत का खेमा बियाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुआफिक इसे बना। उसी खेमे को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यशु के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों की मलकियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के जमाने तक रहा। उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरख्वास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन तैयार करूं, मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है कि खुदावन फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पांव तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे या मेरी आरामगाह कौन सी है, क्या ये सब चीज़ें मेरे हाथ से नहीं बनी। ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किस को तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया, उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल न किया।
जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यसू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि
देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ।
मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनुस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि
ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर।
फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि
ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा।
और ये कहकर सो गया।